તારીખ 21/11/1983, શ્રી પરમાગમસાર, બોલ નંબર 398 અને 399 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 210.
કરે તો પછી શુદ્ધ ભાવ થાય તેવો ક્રમ તો છે ને? પ્રશ્નમાં એવો અભિપ્રાય છે કે અમે શુભ રાગ કરીએ છીએ એ અશુભ રાગને ટાળવા માટે કરીએ છીએ. ધંધા વેપારથી નિવૃત્તિ લીધી અને ભલે શુદ્ધ પરિણામ ન થાય પણ અશુભ રાગ ટાળીને, અશુભ પ્રવૃત્તિ ટાળીને શુભમાં તો આવ્યા ગયા. અને એવો જો ક્રમ હોય કે અશુભ ટળીને શુભ થાય અને શુભ પછી શુદ્ધ થાય તો એક પગથિયું તો આગળ આવ્યા, આવો અભિપ્રાય છે પૂછવા વાળાનો. કે પહેલા અશુભ રાગ ટાળે અને શુભ રાગ કરે, એમ અશુભ ટાળીને શુભ કરે તો પછી શુદ્ધ થાય, શુદ્ધ પરિણામ થાય, આવો ક્રમ છે. એટલે અમે ક્રમને અનુસરીએ છીએ, અશુભ છોડ્યું છે, શુભ કરીએ છીએ અને હવે શુદ્ધ થશે, શુદ્ધ પરિણામ થશે. એ ક્રમ બરાબર છે એટલે અમારી પ્રવૃત્તિ બરાબર છે, અમારી સમજણ બરાબર છે, એમ પૂછનારનો અભિપ્રાય છે. ઉત્તર આપ્યો છે કે એ ક્રમ જ નથી, એવો ક્રમ નથી. પહેલા શુભ ટળે પછી શુભ થાય, શુભ ટળીને શુભ થાય અને શુભ થાય પછી શુદ્ધતા પરિણામ પ્રગટ થાય, એવો ખરેખર ક્રમ નથી. પહેલા સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરે છે, આમ વાત લીધી છે. પહેલા સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરે છે પછી એકદમ શુભ રાગ ટળી શકતો નથી, તેથી પહેલા અશુભ રાગ ટાળીને શુભ રાગ આવે છે. એ સાધકના ક્રમની વાત છે.
બરોબર,
સાધકના પરિણામમાં પહેલા સમ્યક દર્શન થાય ત્યારે એ સાધક થાય, ત્યાં સુધી તો એ સાધક નથી. સાધક થયા પહેલા એમ વિચારે કે હું અશુભ ટાળીને શુભ કરું અને તેથી એ ક્રમથી મને શુદ્ધતા પ્રગટ થશે, તો એ પ્રકાર ક્રમનો એની સમજણનો બરાબર નથી.
બરાબર
એમ કેમ છે, શું એમાંથી તાત્પર્ય નીકળે છે કે પ્રથમમાં પ્રથમ સમ્યક દર્શન થવા માટે એનો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ.
બરોબર,
અશુભ ટાળીને શુભ કરવાનો પ્રયત્ન ન હોવો જોઈએ. લક્ષ્ય ક્યાં છે એના ઉપર છે કે શુદ્ધતાનો પ્રયત્ન કરે. સમ્યક દર્શન એટલે શુદ્ધ પરિણામ, શુદ્ધ પરિણામનો પ્રયત્ન કરે, એવો પ્રયત્ન કરતા એને અશુભ ટળીને શુભ થાય તો ઠીક છે. પણ પહેલેથી જ એમ વિચારે કે અશુભ ટાળીને શુભ કરવું છે પછી ક્રમે કરીને આગળ શુદ્ધતા થશે તો એ અભિપ્રાય બરાબર નથી એમ કેવું છે. આમ થોડો એમ થાય કે આમાં ફેર શું છે, પણ હવે કે આમાં ફેર છે, આખી લાઈન બદલાઈ જાય છે. ઉપાયનો જે પ્રકાર છે એ બદલાઈ જાય છે. જેને અશુભ ટાળીને શુભ કરવું છે એનું શુભ છૂટશે નહીં, અને જેને શુદ્ધતાનો પ્રયત્ન છે, સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવું છે, એને અશુભ ટળશે, શુભ થશે ને એ શુભ પણ ટળશે. જો કે સાધક દશામાં સર્વથા શુભ ટળતું નથી, કેમ કે અપૂર્ણ દશા છે, અલ્પ શુદ્ધતા વાળી દશા છે, પૂર્ણ શુદ્ધતાની દશા નથી સાધક.
બરોબર.
એટલે અમુક ભાગે જે અલ્પ શુદ્ધતા છે એ સિવાયના ભાગમાં પરિણામમાં શુભનો તત્વ છે, શુભ પરિણામ રહેશે. પણ ક્રમશઃ એ શુભ ટળીને પણ શુદ્ધતા વધતી જશે, એને અશુભ વધારે ઘટતું જાય છે. એના માટે એમ ક્રમ બતાવવામાં આવ્યો છે કે એને અશુભ ઘટતું જાય છે, સમ્યક દ્રષ્ટિ થાય, એને અશુભ ઘણું ઘટી જાય છે. એની સાબિતી એ છે કે એને અશુભ ગતિ નથી, અશુભ ગતિ ન થાય, અશુભ ગોત્ર ન થાય, અશુભ નામકર્મ ન બંધાય. અઘાતીમાં તો એટલા ફેર પડે, અઘાતીની જે પ્રકૃતિઓ છે એમાં એનો દેખાય એવો ફેર છે. ઘાતીના ફેરફારને તો લોકો સમજી ન શકે. અંદર જ્ઞાનાવરણી મોહની આદિમાં શું ફેરફાર છે એને ન સમજી શકે, પણ અહીંથી તો સમજી શકે.
બરોબર.
કે એને અશુભ ઘટ્યું છે એની ખાતરી શું કે 47 અશુભ પ્રકૃતિનો એને બંધ નથી સમ્યક દર્શન થતા. એમ સૂચવે છે કે એના પરિણામમાં એવું અશુભ પણ થતું નથી, અશુભ ભાવ ઉપસતો નથી. છે થોડો અશુભ, પણ એ 47 પ્રકૃતિ વાળો નથી. સ્ત્રી વેદ ન બંધાય, ન પુષ્ક વેદ ન બંધાય, વેદનીમાં એ વગેરે પ્રકારે 47 પ્રકૃતિના પરિણામ નથી એટલે બંધ નથી. બંધ નથી એનો અર્થ કે પરિણામ નથી, માટે બંધ નથી.
બરોબર.
અને એ શુભરાગ એને ટળી શકતો નથી. સમ્યક દર્શન થયા પછી પણ એકદમ શુભરાગનો નાશ થતો નથી. ગુણસ્થાન અનુસાર એને શુભ પરિણામ ગુણસ્થાનની કક્ષા અનુસારના થાય છે. ચોથે ગુણસ્થાને જે કક્ષાના શુભ પરિણામ થાય, એવી નીચી કક્ષાના શુભ પરિણામ છઠ્ઠે ગુણસ્થાને ન થાય પાછા. જેમ કે ચોથે ગુણસ્થાને દાન આપે, પાંચમા ગુણસ્થાને દાન કરે, મુનિને પરિગ્રહ જ નથી, છઠ્ઠે ગુણસ્થાને દાન કરવાનો સવાલ નથી. પણ પરિગ્રહ નથી માટે પરિણામ નથી, પરિણામ જ નથી. પરિગ્રહના પરિણામ નથી ને પરિગ્રહમાંથી દાન દેવાના પરિણામ નથી, બે નથી. એમને પરિગ્રહ નથી માટે એવા પરિણામ નથી, એમ નથી. પરિગ્રહ મેળવવાના પરિણામ નથી અને પરિગ્રહ મેળવવાના પરિણામ નથી. પછી એ દાન આપવાના પરિણામ હોય એ પ્રશ્ન રહેતો નથી, એ પરિણામ પણ એમને થતા જ છે. શાસ્ત્રમાં ત્યાં સુધી આવે છે કે મુનિ એકેન્દ્રિય જીવની પણ દયા પાડે, બે ઇન્દ્રિય જીવની પણ દયા પાડે. રસ્તે ચાલતા એરિયા સમિતિ છે, જોઈને ચાલે. પણ સંઘની પંચેન્દ્રિય પ્રાણીને આહાર પાણી ન દે. હાથમાં કમંડળમાં શૌચનું પાણી હોય ને કોઈ તરસો હોય તો એને પાણી પીવડાવવાનો પરિણામ નથી હોતા. ન સમજાય એવું છે. પાણી છે, કમંડળમાં પાણી છે, પણ એ પાણી જેમ પોતાને પીવા માટે નથી તો બીજાને પાવા માટે પણ નથી. એ પાણી મુનિ પીતા નથી. કમંડળનું પાણી તો શૌચ માટે છે. એ તો એક વખત આહાર લે છે ત્યારે પાણી લે છે. 24 કલાકે ફરીને આહાર નહીં ને ફરીને પાણી નહીં. સાંજે આહાર કરીને ચોવીહાર વાળે એ મુનિ ને હતો એ ગ્રસ્ત ની દશામાં છે. ચોવીહાર નો ભાવ ભલે શુભ ભાવ થાય કે રાત્રે આહાર પાણી નહીં, મુનિ ને એ પ્રકાર આવતો નથી, કક્ષામાં નથી, મુનિ ને એ કક્ષા નો શુભ ભાવ થતો નથી. એમ છે એટલે એના શુભ ની જે કક્ષા છે એ ઊંચી કક્ષાના શુભ ભાવ થાય છે. અશુભ ભાવ તો મુનિ ને સર્વથા છૂટ્યા છે, પણ નીચેની કક્ષાના શુભ ભાવ પણ મુનિ ને છૂટ્યા છે. ઊંચી કક્ષાના પંચમાવૃત 28 મૂળ ગુણના શુભ પરિણામ થાય છે. દેવગતિમાં પણ ઊંચી દેવગતિ બંધાય એવા પરિણામ હોય છે. તેને માટે એમ કહેવાય છે કે પહેલા અશુભ રાગ ટાળીને શુભ રાગ આવે છે એમ સાધકને માટે કહેવાય છે. પણ એનો પણ પ્રયત્ન તો શુદ્ધતાનો છે. આવે છે એમ કહ્યું છે, શુભ રાગ કરે છે એમ નહીં, પ્રશ્નમાં શુભ રાગ કરે એવો પ્રશ્ન છે. અશુભ ટાળે અને શુભ કરે એ ઠીક વાત છે, બરાબર છે એમ પૂછવું છે. ત્યારે અહીંયા એમ કહે છે કે અશુભ ટળે અને શુભ આવે ખરું સાધકને, કરે એમ નહીં આવે એને, છતાં એનો પ્રયત્ન શુદ્ધતાનો હોય છે. જ્યાં ચરણાનુયોગનો વિષય ચાલે છે અધ્યાત્મ ગ્રંથોમાં, પ્રવચન સારનો છેલ્લો અધિકાર છે ચરણાનુયોગ ચુલિકા, ત્યાં આ વિષય ચાલ્યો છે કે સમ્યક દ્રષ્ટિને શુભ ભાવરૂપ વિકલ્પ થાય છે એનું કારણ શું? કે એનો પ્રયત્ન તો શુદ્ધતાનો છે, ઉગ્ર પ્રયત્નના કાળમાં તે શુદ્ધોપયોગમાં પરિણમે છે અને મંદ પ્રયત્નના કાળમાં શુભોપયોગ રૂપ થઈ જાય છે, એનો ઉપયોગ છે એ શુભમાં પરિણમે છે. પણ શુભ આવે છે એ રીતે મંદ પ્રયત્ન હોવાથી એને કરવો નથી મંદ પ્રયત્ન, ને શુભ કરવું નથી મંદ પ્રયત્ન, ને મંદ કરવો નથી અને શુભ ને કરવું નથી. એની અભિપ્રાય તો ઉગ્ર પ્રયત્ન થી પોતાના સાધની સિદ્ધિમાં એને આગળ વધવું છે, પણ શક્તિ ઓછી હોય તો પ્રયત્નમાં મંદતા આવે, તીવ્ર મંદ તીવ્ર મંદ એવા પુરુષાર્થના પરિણામમાં પણ પ્રકાર ઉપજે છે સાધક જીવને. ત્યારે ઉગ્ર પ્રયત્નના કાળમાં એને શુભોપયોગ દશા થાય છે અને મંદ પ્રયત્નના કાળમાં એ શુભોપયોગમાં આવે છે. શુભોપયોગ કરવો છે એમ છે નહીં, પછી અશુભ કરવો છે એ પ્રશ્ન વિચારવાનો રહેતો નથી. એ સાધકના ક્રમની વાત છે એમ સમજવું. એટલે જેને સાધક થવું હોય એણે પણ શુદ્ધતાનો જ પ્રયત્ન કરવો, ભલે એને અશુભ ટળીને શુભ આવે, પણ એને પ્રયત્ન તો શુદ્ધ સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવાનો જ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એમ કહે નીચે એ વિષય લીધો છે 398માં કે આપે સાધકના ક્રમની એ વાત કરી, તો અમે તો રહ્યા અજ્ઞાની, અમારે શું કરવું? આમ પહેલેથી થાપે અમે તો રહ્યા અજ્ઞાની એમ ન લેવું. વર્તમાન અજ્ઞાન દશા જાણવાનો વિષય છે અને અવલંબન લેવાનો નથી. વર્તમાન દશામાં અજ્ઞાન છે એટલે અમે એમ વિચારીએ કે અમે તો રહ્યા અજ્ઞાની, પણ એમ અવલંબન લેવા માટે એ વાત, માત્ર જાણવા માટે વાત છે. હા, એમાં સ્વીકૃતિમાં ભાષામાં સ્વીકૃતિ કરે એમાં આલંબન બધાને થાય એવું નથી. બધાને કોઈ પ્રયત્ન હોય શુદ્ધતાનો, એને સ્વરૂપના અવલંબનના પ્રયત્નમાં ત્યાં એને આલંબનથી એ વાત લેતો નથી. આલંબન કરવા માટે, આલંબન લેવા માટે એ વાત નથી કરતો. કોઈ જીવ સન્મુખ થઈને સમ્યક દર્શનના પ્રયત્નમાં લાગ્યો છે, ઉર્ધ્વ પરિણામમાં જાય છે, એ કદાચ સમ્યક દર્શન પહેલાં એમ સ્વીકાર કરે કે દશામાં હજી અજ્ઞાન છે, તો એનો ત્યાં આલંબન લેવા માટે એ વાત કરતો નથી. ભાષાને પકડાય નહીં. ખરેખર એને અવલંબન આવે છે તો એ દોષ છે, એ અવલંબન લેવા યોગ્ય નથી. હું આત્મા છું, ત્યાં મારું વજન છે, ત્યાં મારે અવલંબન લેવું છે, એવો મારો પ્રયાસ છે, એ પ્રયાસમાં હજી સફળતા થતી નથી, તો પણ હું અજ્ઞાની છું એવું જોર મારે દેવું નથી. હું જાણું છું, મને ખ્યાલ છે, પણ ત્યાંથી ખસીને મારે આત્મામાં અંદરમાં ઉતરવું છે, એ વાત અત્યારે છે મારા પરિણામમાં, એ પ્રકાર છે મારા એમ છે. ત્યાં અવલંબનમાં શું છે કે હું તો આવો જ છું એમ સ્થાપે છે, પછી એનું જોર જે ત્રિકાળી શુદ્ધાત્મ તત્વ છે એના ઉપર લાગતો નથી. આમ છે એટલે અજ્ઞાન હોય ત્યારે પણ એને ત્યાં અજ્ઞાનમાં જોર દેવા જેવું નથી. જેમ અવસ્થાનો દોષ છે તે જાણવા યોગ્ય છે અને જણાય મુમુક્ષુની ભૂમિકામાં,
બરોબર,
છતાં એના એનું અવલંબન ન લીએ. અવલંબન લઈએ તો દોષ વધે. દોષ છેદવા માટે છે, અજ્ઞાન પણ દોષ છે ને એ છેદવા માટે છે. જ્ઞાન કરવાની બે પદ્ધતિ છે, એ જ્ઞાન કરીને ઉપાદેયતા આવે ને એ જ્ઞાન કરતા હેયપણું આવે. એ હે ઉપાદેય રૂપ જે છે એ વિવેક, વિવેક જ્ઞાનનો વિવેક છે. જ્યાં હે ઉપાદેય કરે છે ત્યાં જ્ઞાનમાં વિવેક થાય છે. જે અજ્ઞાન છે એ ઉપાદેય નથી. એટલે અમે તો રહ્યા અજ્ઞાની એમ સ્થાપીને આગળ ચાલે તો ત્યાં અવલંબન આવી જાય છે એમ કેવું છે. એ જાણવાનો વિષય છે અને જોર દેવાનો વિષય નથી. અવલંબનમાં એના ઉપર ભીંસ આવે છે. શુદ્ધાત્મા છે એના ઓળખાણમાં ને એના પ્રયત્નમાં રહેવું, ત્યાં જોર, એટલે ત્યાં જોર જશે. એના પ્રયત્નથી ત્યાં જોર જશે, જેટલું થાય એટલું, જેટલું થઈ શકે એટલું. પણ જે જોર દેવાનું સ્થાન છે, ઉલ્લંઘન લેવાનું સ્થાન છે, એ બાજુ બળ થવું જોઈએ. પરિણામ આશ્રિત પરિણામ તો અનંતકાળથી કરતો આવ્યો છે, પરિણામ આશ્રિત પરિણામ તો અનંતકાળથી કરતો જ આવ્યો છે. અવલંબનથી એની પરંપરા ચાલે છે, જેને અવલંબે છે એ બાજુની પરંપરા ચાલે છે. જ્યાં જોર દે છે ત્યાં એનો રસ છે, જ્યાં એનો રસ છે ત્યાં એનું જોર જાય છે, અને તે લાઈનના પરિણામની પરંપરા વધે છે. એવો પરિણામ વિષયક નિયમ છે,
બરોબર.
એટલે જાણવાનો વિષય શું છે, ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં એ ન્યાય છે આ, કે પર્યાયનું ક્રમબદ્ધપણું છે એ અવલંબનનો વિષય નથી પણ જાણવાનો વિષય છે. કાંઈ બહારમાં પોતાનું માનેલું હોય એમાં નુકસાન થાય ને પછી એમ વિચારે કે તો ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં થવાનું હતું તે થયું, તો એને અવલંબન લઈ લીધું ત્યાં. હા, મોટી ભૂલ, ઉલટું થઈ ગયું, ભૂલ થઈ ગઈ ને, ઉલટું વિપરીત જ થયું. એ હું આત્મા જ્ઞાયક છું, પરિણામના ક્રમમાં જેમ થવું હોય તેમ થાવ, એમ નાયક ઉપર એનું વજન જાય, સ્વરૂપ ઉપર એનું વજન જાય, અને પરિણામ વિષયક માત્ર જ્ઞાન થાય, એથી વધારે નહીં, ત્યાં જરા પણ વજન નહીં, તો જે પર્યાય આશ્રિત પરિણામનો પ્રકાર છે વજન ફરે તો બદલાય, વજન એમને એમ રાખે તો એ બાજુથી પરિણામની સ્થિતિ બદલતી નથી. અવલંબન ફરે તો પરિણમન નો પ્રકાર પલટે. એ જ્ઞાન ના પડદા ઉપર એક વાત આવી
બરોબર,
કે આત્મા છે એના મૂળ સ્વરૂપમાં જ્ઞાન આનંદ આદિ અનંત શક્તિઓ અનંત દિવ્ય ગુણોનું સામર્થ્ય ભરેલું છે. આત્માનું જે મૂળ સત્વ છે, મૂળ તત્વ છે, જેને આત્મા કહીએ, ખરેખર આત્મા કહીએ, એ તો આ સ્વરૂપે છે, જે ત્રિકાળ એમને એક રૂપ ધ્રુવ છે. વર્તમાન અવસ્થામાં અજ્ઞાન દશામાં પણ સમજવા તો આટલું મળે છે. વર્તમાન દશામાં એનો સ્વીકાર નહીં હોવાથી, એવો હું છું એમ સ્વીકાર નહીં હોવાથી, અને કર્મજનિત પર્યાયે મનુષ્યપણું, પુરુષપણું, સ્ત્રીપણું, જે કાંઈ સંયોગો છે એ બધા સંયોગો વાળો, તે તે સંયોગો પ્રત્યે થતા પરિણામમાં તે તે પ્રકારના રાગ વાળો એવો અનુભવ થાય છે, એવી ગડબડ વાળી દશા છે. મૂળ સ્વરૂપ આવું હોવા છતાં જે પરિણમન છે એમાં એવો પ્રકાર નથી કે હું આવા મૂળ સ્વરૂપે છું, આમ જાણવા તો મળે છે કે નહીં? તો પછી આ જે પ્રકાર છે અવસ્થાનો, એનું જે અવલંબન છે એને આધારે એમ થાય છે. કર્મજનિત જે અવસ્થા છે એ હું છું એવો હું છું એમ અવલંબન લીધું છે, એટલે અવલંબનના આધારે તે તે પ્રકારના એવા પરિણામ ચાલ્યા કરે છે. સમજ મેં આતી હૈ, સમજ મેં એ બાત આ સકતી હૈ, અજ્ઞાની સમજ નહીં કર સકતા એવું બાત નહીં હૈ. પરિણમન કરના આગે કે પીછે કી બાત હૈ, લેકિન સમજ મેં તો સમજ સકતા હૈ. જૈસે ઉસકો બતાયા ભાઈ દેખ, તેરા અનુભવ હૈ કે મેં દેહ સ્વરૂપી હું, મનુષ્ય હું, એસા એસા રાગ વાલા હું, દેહ વાલા હું ઓર રાગ વાલા હું, એસા તેરા અનુભવ મેં તેરા સ્વરૂપ હૈ. અબ હમ એક દૂસરી બાત, નહી બાત તુજે બતાતે હૈ, હમ યે કહેતે હૈ કે યે રાગ વાલા ઓર દેહ વાલા તું નહી હૈ, તું જ્ઞાન સ્વરૂપી હૈ, જ્ઞાન વાલા હૈ, જ્ઞાનમય હૈ. વાલા વાલા ક્યા, જ્ઞાનમય હી હૈ તેરા સ્વરૂપ, તો જ્ઞાનમય હૈ. તો ફિર અજ્ઞાન દશા મેં ભી આદમી જાંચ કરતા હૈ, જૈસે કોઈ ભૂલ કરતા હૈ તો ભૂલ ભૂલ મેં હિસાબ નહીં મિલતા હૈ તો જાંચ તો કર સકતા હૈ કે કહાં ભૂલ હુઈ, કૈસે હુઈ. તો પહેલે તો જાતા હૈ તલાશ મેં અંદર મેં, કે યે બાત કહેને વાલા કોઈ પ્રમાણિક પુરુષ હૈ, માન્ય કરને લાયક પુરુષ હૈ, આપ્ત પુરુષ હૈ, તો બાત તો સહી હોગી ઇનકી, મેરી બાત સહી હૈ તો મુજે સમસ્યા ક્યો હૈ, દુઃખ કી સુખ કી જો સમસ્યા હૈ ઇસકે પીછે તો ઉનકો યે વિચાર ચલતા હૈ કે દુઃખ મિટાના હૈ, સુખ પ્રાપ્ત કરના હૈ. અબ જિસકો સુખ પ્રાપ્ત હૈ વો કહેતા હૈ કે તેરી ભૂલ હૈ ઇસલિયે તુજે દુઃખ હૈ, તેરી ભૂલ હમ યે બતાતા હૈ કે તું જ્ઞાન સ્વરૂપ હૈ, તો ઉસકો યે પતા ચલતા હૈ કે જૈસા રાગ ઓર દેહ હૈ વૈસા જ્ઞાન ભી તો હૈ,
બરોબર,
યે ભી મેરે મેં હી હૈ, જૈસે રાગ મેરે મેં હૈ, દેહ મેરે સંયોગ મેં ઇતના નજદીક હૈ કે મેં ઇસસે ભિન્ન મેરા વિચાર કભી નહીં કિયા. અબ જ્ઞાન મેરે મેં હૈ તો મેં જ્ઞાનમય હું યા રાગમય હું, એ દો બાત કા મુજે ફૈસલા કરના હૈ. દોનો સ્વરૂપ તો હોઈ નહીં સકતા, રાગમય ભી હું ઓર જ્ઞાનમય ભી હું, દોનો સ્વરૂપ તો હોઈ નહીં સકતા. क्योंकि राग में ही हूं ऐसा अनुभव में तो ज्ञान में ही हूं ऐसा अनुभव नहीं आता था।
बरोबर।
इसलिए जहां तक राग में ही हूं ऐसा स्वीकार आता है वहां तक तो मैं ज्ञान में ही हूं उसका स्वीकार ही नहीं आता, हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो तलाश करने से उसको पता चलता है कि अलग विभिन्न प्रकार के राग तो छूट जाते हैं। कोई राग अच्छा लगे और रखना चाहे तो क्या रख सकता है?
नहीं
कि नहीं रख सकता है। जैसे देह छूटना का काल में देह को रखना चाहे तो देह को नहीं रख सकता है। संयोग छोड़ना चाहे रखना चाहे तो संयोग को नहीं रख सकता है। कोई आदमी को पैसा बन जाता है फिर गरीबी आती है तो क्या छोड़ना चाहता है अपने धन वैभव को?
नहीं।
फिर भी छूटता है, छूटने के काल में तो रहता
नहीं।
नहीं ऐसा देह भी रहता नहीं, ऐसा राग भी रहता नहीं। अगर मेरा स्वरूप होता मैं तो रहता हूँ, मैं रहता हूँ और ये नहीं रहता है, ये सिद्ध करता है कि मैं इस रूप तो नहीं हूँ। और ज्ञान में तू है ऐसा हमने बताया श्री गुरु ने, तो ज्ञान तो नहीं छूटता है। ज्ञान 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 तो निरंतर चालू रहता है। कभी आत्मा में से ज्ञान का छूटना संभव नहीं है। तो ज्ञान में जब वो अपनत्व उसको अपना अस्तित्व भाषित होता है या ज्ञान अपना अस्तित्व को ग्रहण करता है, क्योंकि ग्रहण करने वाला भाषण करने वाला ज्ञान ही है। जब ज्ञान स्वयं का अस्तित्व की ख्याल में आता है तो उसको पता चलता है कि मैं राग रूप नहीं हूँ। बात सही है, देह रूप नहीं हूँ, राग रूप नहीं हूँ, मेरा व्यापकपना ज्ञान में है, मैं राग में व्यापक रूप में नहीं हूँ, तो उसको पता चल जाता है। तो अज्ञान दशा में भी समझ तो हो सकती है और समझ में ही सारा पुरुषार्थ गर्भित है।
समझ में
सुगानिधि ने पत्र में लिखा है कि प्रथम समझण में ही भविष्य का पुरुषार्थ गर्भित है, इसलिए गुरुदेव श्री का वजन समझ पर रहा। बार बार वो समझाने समझने को कहते हैं, समझाए छे का है कहता है। तो समझन पर वजन छे मुमुक्षु की भूमिका में मुख्य जो बात है वो समझन करने की है। इसलिए स्वाध्याय का क्रम अनादि से है। इस मार्ग में परंपरा है, जिन शासन में स्वाध्याय करने की परंपरा इसी कारण से रखी गई है कि समझ करें, और समझ करे तो सारा परिणाम बदल जाता है, अज्ञान पलट के ज्ञान हो जाता है।
समझ में भविष्य का पुरुषार्थ है।
समझ में समझ होते ही जब ऐसा पता चलता है कि मेरा ज्ञान स्वरूप है इतना ही नहीं, ऐसा ज्ञान सामर्थ्य तो मेरे में अनंत अनंत अपरिमित ज्ञान का भंडार में हूँ, ऐसा पता चल जाता है। जब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा पता चलता है, तब साथ ही इसकी अनंतता का पता चलता है। कोई समझावे नहीं समझावे वो सवाल नहीं है, वहाँ तिरियंज को कौन समझावे। लेकिन वो भीतर में राग से भिन्न अकेला ज्ञान को जब जानता है पहचानता है तो सारा अनंत ज्ञान की खान जो है उस खानी को पकड़ता है, इसका पता चल जाता है। अकेले ज्ञान पर्याय को नहीं समझता है, पूरा ज्ञान भंडार है उसके ज्ञान में आ जाता है। एक ही आप पुरुष ये मार्ग बताने वाले हैं, इसमें कोई सवाल नहीं है। रात्रि को एक प्रवचन चला था कि सत्शास्त्र है वो परोक्ष वचन है और ज्ञानी है वो प्रत्यक्ष है। वो प्रत्यक्ष की पूर्ति कोई तरह से हो, किसी भी तरह से हो ही नहीं सकते।
बराबर,
इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, प्रत्यक्ष का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वहां श्रीमद जी का एक आधार लिया था कि कोई ऐसा विचार करे कि प्रत्यक्ष सत्पुरुष तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है और ऐसा लिया है, है?
समझ में नहीं आती आप,
क्यों नहीं जमती है? निकालो प्रश्न, क्यों नहीं जमती है आपको?
कैसे हो गया?
वर्तमान वर्तमान प्रकट सुख का अनादर है, इसलिए अशुभ हो गया, तीव्र अशुभ हो गया। अशुभ हो गया नहीं, तीव्र अशुभ हो गया। वो तो एक बहाना लिया है, ने सत्शास्त्र का, आचार्य का, शास्त्र का
बना लिया है,
और बना लिया है।
क्या पढ़ा है?
आपको कोई कैश देवे और एंट्री देवे उसमें कोई फर्क नहीं है क्या? तो व्यापारी आपको इस तरह से समझाएंगे, है? कैश देवे, ये 10 लाख रुपया कैश,
yes,
और ये 10 लाख की एंट्री, कितना फर्क है इसमें? एंट्री में से मकान नहीं खरीदोगे, कैश में से तो मकान आएगा। कोई ये कहेंगे कि हमको कैश नहीं चाहिए, हमको तो एंट्री चाहिए, उसको पता ही नहीं है कि पैसा क्या चीज है।
उसको पता ही नहीं,
उसको पता ही नहीं है कि ये पैसा क्या चीज है। वैसे वो कहता है कि हमको तो प्रत्यक्ष योग का कोई महत्व नहीं है, हमको तो शास्त्र का महत्व है। उसको कहते हैं कि सत क्या चीज है, तुझे कोई पता नहीं,
पता ही नहीं, और अनादर भी है,
पता नहीं है, इसलिए अनादर है।
गुरु के मुंह से कुछ बात होती है, फिर घर से अगर आदमी उसका अन्याय करता है, तो उसमें
साथ में ऐसा है कि सत्पुरुष है तो इसकी भावना, इसका वचन को, परोक्ष वचन को सामने रखने की है या इसका प्रत्यक्ष योग करने की है? मैंने आपको एंट्री चाहिए या कैश चाहिए, बस ये बात फर्क बहुत है इसमें कि जो प्रत्यक्ष सत्पुरुष है उसकी जो जागृत चैतन्य की जो चेष्टा है, वो चेष्टा परोक्ष वचन में आपको इसका दर्शन नहीं हो पाएगा। और ये जो है, इसमें जो समझ का जो मौका है, इसमें जो समझ का जो तरीका है, ये इतना प्रत्यक्ष में इतना फर्क वाला है प्रत्यक्ष और परोक्ष में कि इसका कोई पूर्ति नहीं हो सकती है। बहुत गहरा विचार से ये ज्ञान उन्होंने इस बात का टोटल मारा है, बहुत गहरी विचारणा से और बहुत गहरा अनुभव उसमें पड़ा है कि इसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती है, ये सब बहाना है। जब प्रत्यक्ष का निषेध आता है कि नहीं, हमको तो परोक्ष भी लाभ का कारण है, वो प्रत्यक्ष योग नहीं हो सके, पुण्य योग ऐसा न हो, तो इसकी भावना रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, संतोष मान ले कि ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं है तो परोक्ष में ये तो करते ही है, पर ऐसी बात कभी होती उसको पता नहीं है कि मुझे प्रगट सत का निषेध वर्तता है, उसका उसको पता नहीं है। और प्रगट सत का निषेध में उसको मार्ग नहीं मिला है, वो दरवाजा को वो बंद करता है। मार्ग मिलने का वो दरवाजा एक ही है, वो तो कर लिया था कि वर्तमान में सर्वज्ञ परमात्मा तो नहीं है, 24 तीर्थंकर चले गए, 25 में होने वाले नहीं है। अच्छा, केवली कोई होए वो भी, वो पद भी विच्छेद हो गया इस काल में, कोई केवली होने वाले नहीं। निर्ग्रंथ मुनिराज है उसका भी दर्शन हो सकते हैं, अभी हो सकते हैं, वो पदनी विच्छेद गए लेकिन अभी कोई है नहीं। अब बात रही प्रगत संत में जो कोई बात रही तो एक सत्पुरुष की ही रही, वो भी इस काल में है क्वचित क्वचित, लगातार नहीं है, सबों को सर्वकाल में मिले ऐसा युग संभवित नहीं है, क्वचित क्वचित किसी किसी जीव को मिल सकता है। अब इसको ही बंद कर देवे बात खत्म हो गई, उसमें उसको बंद करने, उसमें जो निषेध है वो मोक्ष मार्ग को बंद करने की बात है, इसमें ऐसी जबरदस्त, इसलिए वो अप्रशस्त हो गया। ये तो 100 वर्ष के पहले लिखा है श्रीमद् राजचंद्र जी ने, ये बात 100 साल के पहले लिखा है, आजकल लिखी हुई बात 661 नंबर का पत्र है श्रीमद् जी के, इसमें वो बात लिया है कि कोई परोक्ष शास्त्र पर इतना वजन रखे कि हम इससे बढ़िया बात को स्वाध्याय करते हैं, अरे ज्यादा वजन नहीं रखे इसकी बराबरी भी करे तो भी उसको अप्रशस्त शास्त्रीय अभिनिवेश है, बराबरी कर ले तो भी दोनों बात रख ली है, वो तो अनुभवी है ना। कोई ये कहेंगे कि हमको तुम तो ऊंचे शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, तो कोई ये कहेंगे कि ये भी सत्य की बात है, इसमें भी सत्य की बात है, दोनों तो वचन है हमारे, ये भी वचन है वो भी वचन है, दोनों में सत्य की बात है, ऐसा बराबरी करेगा तो भी अप्रशस्त शास्त्रीय अभिनिवेश वर्तता है, ऐसा लिया है विपरीत अभिप्राय उसको अभिनिवेश कहते हैं, जो हानिकारक है कुगति में ले जाने वाला है, अशुभ है वो कुगति में ले जाने वाला है, इसमें मनुष्य और देवगति भी नहीं आती है, वो विपर्यास में मनुष्य देवगति का क्लास नहीं है, इसलिए उसको अप्रशस्त कहा। अभिनिवेश का नाम ही विपरीत विपरीत अभिप्राय है, लेकिन अप्रशस्त इसलिए लगाया है, प्रशस्त हुए तो मनुष्य देव गति मिल सकती है लेकिन अप्रशस्त में नहीं मिल सकती, वो अशुभ है, शुभ नहीं रहा, ऐसी बात लिया है। तो कहते हैं तो अज्ञानी को क्या करना, तो कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं ऐसे नहीं लो, ऐसा अवलंबन से नहीं चलो,
नहीं चलो
अवलंबन लेके नहीं चलो, ख्याल करो दूसरी बात है, अवलंबन लेना दूसरी बात है। उत्तर है कि अज्ञानी को पहले वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके पहले क्या करना है,
पहले क्या करना,
और शुभ टाल के शुभ करना
तो बराबर है ना,
नहीं पहले वस्तु के स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना, परिणाम शुभ अशुभ दोनों प्रकार के होंगे, मुमुक्षु की भूमिका होगी, सम्यक ज्ञान पहले की मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन वाली स्थिति होगी, तो उसमें शुभ और अशुभ दोनों होगा, तुम ये चाहोगे कि मुझे शुभ ही रहे और अशुभ कभी होवे ही नहीं, ये बात संभवित नहीं है। जैसे दिन के पीछे रात ही आती है, कोई चाहे कि हमको तो सूर्य का उजाला ही रहे, अंधेरा कभी नहीं चाहिए, लेकिन वो दिन खत्म होने वाला है ही, और रात के पीछे दिन ही आता है, कभी किसी जीव को संसारी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को सर्वथा शुभ रहे और सर्वथा अशुभ परिणाम रहे ऐसा कभी बनता नहीं, कोई चाहे तो भी नहीं बन सकता, उसका परिणाम शुभ ही रहे और इसका परिणाम अशुभ ही रहे ऐसा चाहे तो भी नहीं बनेगा, शुभ और अशुभ संसार जीव को कषाय की मंदता तीव्रता बिना अकर्तृत्व का अभिप्राय से भी होता ही रहेगा, ये वस्तु स्थिति है
बराबर।
इसलिए ऐसा कहते हैं कि शुभ टाल अशुभ टाल के शुभ करने का जो तेरा अभिप्राय है, लेकिन शुभ का परिणाम सर्वथा सदा रहने वाला
नहीं है,
नहीं है
बराबर।
वो तो शुभ बदल के शुभ आगा आएगा, आएगा और आएगा ही। फिर करना क्या है, ये जब सवाल पैदा होता है तो करना ही कि पहला वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना है। शास्त्र द्वारा हो जाता है और सत्पुरुष द्वारा होता है, शास्त्र द्वारा नहीं होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन सत्पुरुष की उपस्थिति होने के बावजूद भी उसका उसको गौण करके मतलब इसका निषेध करके कोई शास्त्र में से लेना चाहता है उसको नहीं होगा। उसको ज्ञान तो वस्तु स्वरूप का नहीं होगा, लेकिन उसका प्रशस्त गति भी नहीं रहेगी, क्योंकि प्रशस्त परिणाम प्रशस्त अभिप्राय नहीं रहा, अप्रशस्त अभिप्राय हो गया। नहीं कराना नहीं, क्यों कराए, कौन करावे, किसको कराना है, ज्ञानी के प्रति भक्ति ज्ञानी को कराना है या अज्ञानी को कराना है, किसको कराना है। ज्ञानी तो चाहते नहीं कि तुम हमारी भक्ति करो, वो तो ज्ञानी तब हुआ है कि जिसको इस जगत में से कुछ चाहिए नहीं, तब तब ज्ञानी हुए हैं कि इस जगत में से मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा आत्मिक सुख, मेरी आत्मिक शांति यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसमें से तो वो ज्ञानी हुए हैं। उसको कोई दूसरे की भक्ति तो नहीं चाहिए, फिर कराने की बात कह रहे हैं। लेकिन ये एक परिस्थिति है, एक वास्तविकता है, इस वास्तविकता को बताई गई है, भक्ति कराने की बात नहीं है, वास्तविकता को बताई गई है। लिया है श्रीमद जी ने लिया है, 200 का पत्रांक है, उसमें हुआ दिया है कि ज्ञानी को अपेक्षा नहीं है, ऐसा करके हुआ दिया है। लेकिन मुमुक्षु की ऐसी स्थिति हुए बिना ज्ञान प्राप्ति उसको होती है, ऐसा बात नहीं है।
915
नंबर का पेज है, 200 नंबर का,
900 200,
उसमें वचनावली है, 7वां नंबर का ये वचन है। यद्यपि ज्ञानी भक्ति चाहते नहीं, यद्यपि ज्ञानी किसी की भक्ति चाहते नहीं, किंतु मोक्षाभिलाषी को वह कहीं से किए बिना उपदेश परिणमता नहीं। मोक्षार्थी मोक्षाभिलाषी आत्मार्थी को ज्ञानी की भक्ति हुए बिना उपदेश परिणाम पानता नहीं, शास्त्र में से उसको उपदेश परिणाम पामे प्राप्त होगा
नहीं, ऐसा कहता नहीं,
क्योंकि उसको निषेध आ गया। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो शास्त्र पढ़ूंगा, इसमें भी वो बात है उसमें भी वो बात है, उसको परिणाम आएगा, उसका उपदेश बहुत परिणमेगा नहीं उसको। और मनन और निधिध्यासन का हेतु भी नहीं होगा, परिणाम तो पामे पाएगा नहीं, लेकिन इस बोध का उसको मनन और निधिध्यासन भी रहेगा नहीं। देखो क्या अनुभव है इनका, निधिध्यासन मैंने लक्ष्य रहना, उसका लक्ष्य और लौकिक बातों में चला जाएगा, वो शास्त्र पढ़ेगा तो ये शास्त्र पढ़ने से मेरा क्षोषण कितना बड़ा और मेरा क्षोषण का प्रभाव कितना रहा दूसरे लोगों पर, और मेरी क्या इमेज बढ़ी क्या हुई, ये सब बात हो जाएगी इसमें। ये निधि ध्यासन हो जाएगा इनका, मनन और निधि ध्यासन वहां चला जाएगा। सत्काम में मनन और निधि ध्यासन नहीं रहेगा। उसको भी छोड़ दिया तो ऐसा नहीं है कि जिसको प्रत्यक्ष है उसको मिले ही मिले। अगर वो इतना प्रत्यक्ष में इतना सर्वार्पण बुद्धि नहीं आई तो ये हो जाएगा, सर्वार्पण बुद्धि वाले को नहीं होगा। ये स्थिति उसने स्वीकार नहीं किया प्रकट सत्ता, वो भी संयोग होने के बावजूद भी उपेक्षा करता है। संयोग है उसको, द्रव्य संयोग है, भाव में उपेक्षा है, क्या बात है। बात तो बराबर हो गई उपेक्षा की। जैसे संयोग नहीं होने पर भी संयोग नहीं मिलाने में उपेक्षा है, वैसे संयोग होने पर भी संयोग में उपेक्षा है। तो दोनों बात हो गई इसकी बराबर। उपेक्षा वाली बात तो भीतर के दोनों की बराबर की होगी, एक ही स्थान में आ गए तो उसको योग अयोग के बराबर है, उसको योग है ही नहीं, ऐसा ऐसी बात है।
सर्वसमर्पण
मैंने परमेश्वर बुद्धि, ठीक
परमेश्वर बुद्धि आनी चाहिए,
परमेश्वर बुद्धि जैसे कोई परमात्मा ही है मेरे लिए। कहाँ है सुधारी जी ने,
इससे भी अधिक
हमारे लिए तो तीर्थंकर से भी अधिक है। हो सकता है कोई तीर्थंकर से अधिक
नहीं,
तो ऐसी बात करते तो आगम विरुद्ध हो जाएगा बात, आगम विरुद्ध नहीं है, ठीक है। आगम विरुद्ध नहीं होगा,
नहीं
पंडित लोग तो यही कहेंगे ये तो आगम विरुद्ध बात है, कोई तीर्थंकर से अधिक निमित्त हो सकता है तीन काल में, तो हो सकता है हमारे लिए तो है ही। अनंत बैर तीर्थंकर के समोसरण में गए कुछ नहीं पाया और यहाँ पाया तो इससे अधिक हो गया। खुलासा किया है, स्वयं ने खुलासा किया है, ये न्याय रहा है। शब्द को मत पकड़ो, न्याय को पकड़ो, प्रयोजन को पकड़ो, तो बात सही है, कोई इसमें विरोध नहीं है, विरोध वाली बात नहीं है प्रयोजन के हिसाब से। ऐसी परमेश्वर बुद्धि आती है तब ही काम होता है, वहां तक काम होता नहीं, ये बात है। बहुत बड़ा रहस्य है, गहरा रहस्य। ये मोक्ष मार्ग का प्रवेश होना और नहीं होने का सवाल है, मुद्दा है, ये प्रयोजन का विषय है। या तो मोक्ष मार्ग को तुम बंद करो या खुला रखो अपने अभिप्राय, जैसा अभिप्राय बनाना चाहो। नहीं चला तो वो स्वयं ज्ञानी थे, लोग भक्ति बहुत करते थे, कैसे चलाएंगे वो। बाहर में तो लोग जैसे कोई कंपटीशन होवे, कॉन्टेस्ट होवे, ऐसी भक्ति करते थे लोग। भले ही भीतर में कुछ होवे नहीं होवे दूसरी बात है, पैसा खर्च करते थे, चरण स्पर्श करते थे, जय बुलाते थे, सब करते थे, दर्शन करते थे, स्तुति करते थे, सब लोग की स्तुति करते थे। अपने लिए तो यही कहेंगे, राग है राग है सब समझो पहले, ये बात आत्मा का स्वरूप समझ ऐसे कहेंगे, क्योंकि उसको तो भक्ति नहीं चाहिए, उनको तो अपेक्षा नहीं है। स्वयं का विषय आएगा तो न्याय बदल जाएगा। ये न्याय का विषय ही कोई ऐसा है कि सज्जन पुरुष जो है वो दूसरे के प्रति दूसरा उपकार करता है तो कुछ नहीं गिनता है, मैंने कुछ किया ही नहीं, इसमें क्या हो गया, ऐसा कहेगा। और दूसरा थोड़ा भी उपकार करेगा, थोड़ी भी मदद करेगा या थोड़ा बस सद्भाव रखेगा तो बोलेगा हमारा उपकार है। अपने लिए वो नहीं कहेगा कि मैं इनका उपकारी हुआ है, मैंने उपकार किया है, वो नहीं कहेगा। दूसरा थोड़ा भी करेगा, दशांश भी करेगा, तो रहेगा, हमारा कोई उपकार, ये उसने हमारा उपकार किया है। बिल्कुल उल्टी सुलटी बात है लेने देने में, ये न्याय का विषय है और बिल्कुल न्याय संगत है, परिपूर्ण न्याय रूप है ये। वैसा ही
कल आपने कहा कार्य शक्ति का कारण भी है और
मोक्ष मुक्ता मुक्ति का भी कारण, दोनों बात है। वचन विरोध आएगा, अभी प्रयोजन में विरोध नहीं है, प्रयोजन से देखो तो कोई विरोध नहीं है, वचन में विरोध है। गुरुदेव ने ही कहा, ये गुरुदेव के वचन थे, हमारे हीरा भाई के पिताश्री थे, हीरा भाई बेगम वाले बहुत भक्ति वाले थे, गुरुदेव के प्रति इनकी भक्ति बहुत थी, तो गुरुदेव बार बार निमित्त का निषेध करें, क्योंकि एक साथ सब निमित्त का तो निषेध भले ही करो आप, लेकिन हमारे लिए जो आप निमित्त है उसका निषेध हम नहीं कर सकते हैं। गुरु तो गुरु ही है, बस गुरु हुए बात खत्म हो गई। मैं तो गुरुदेव कहते वो सब राग है, राग है, ये तुम्हारा राग है, क्योंकि वो देखते थे कि ये मेरे प्रति बात हो रही है, नहीं समझते थे क्या, तो बिल्कुल न्याय उल्टा हो जाता है, नहीं नहीं ये बात नहीं, ये बात नहीं, क्योंकि उनको खुद तो अपेक्षा नहीं है। तो बैंसरी की बात आई तो ये कहा कि नहीं समझेगा लेकिन चिपट कर रहेगा, इसका बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा बोल दिया। निमित्ताधीन बात हो गई, इतना निमित्त का जबरदस्त निषेध करने वाले आप ऐसे निमित्त की निमित्ताधीन बात कैसे करते हो? लेकिन ये बात रही इनकी असाधारण व्यक्तित्व की कि दोनों पहलू है। आपने गुरुदेव को आधा पहचाना है या पूरा पहचाना है, ये सवाल पैदा हो जाएगा फिर। जब आधा पहचाना है तो बिल्कुल नहीं पहचाना है, ये बात हो गई इसमें आएगा कि नहीं सवाल?
एक बात सच्ची तो सब बात सच्ची,
एक बात सच्ची तो उनकी सब बात सच्ची। हमारे मुमुक्ष ने प्रश्न किया है कि समझो कि कोई सत्पुरुष की ऐसी बात हो को प्रत्यक्ष सीधी तो सम्मत नहीं हो गए कि ऐसी बात किया, वो बात कैसे सम्मत हो सकती, और गुरुदेव ने ऐसी बात किया, सत्पुरुष ने ऐसी बात किया, तो हमको उस वक्त क्या करना? हमारी बुद्धि का तो हम निषेध नहीं कर सकते, ये तो एक फैक्ट है, हकीकत है कि इस वक्त जो समझ में है उसको हम निषेध कैसे करेंगे, इस वक्त हमको क्या करना है? ऐसा एक प्रश्न चला चर्चा में, तो हमने ये जवाब दिया कि पहले तो आप उसको सम्मत करो, बुद्धि को बाउंड करो, क्योंकि बुद्धि में भ्रम हो सकता है, बुद्धि में भूल हो सकती है। अगर आपने इस सत्पुरुष को विशिष्ट रूप में स्वीकार किया हो, यानी सत्पुरुष वो है कि जिसको सारे जगत में से कुछ नहीं चाहिए, एक आत्मा ही चाहिए, ऐसा आत्मा के प्रति अंतर्मुख हो के जिसने आत्मिक सुख शांति पैदा की है, ऐसा महान विवेक जिसको प्रकट हुआ है, इस स्वरूप में जब आपने सत्पुरुष को स्वीकार किया है, तब इसके वचन के प्रति इसकी इस प्रकार का कोई विवेक भी मौजूद है और ये वचन निकला है, इसका भी आप स्वीकार करो। ये विवेक चला गया है और ये वचन निकला है, ऐसा स्वीकार मत करो।
बराबर,
ये विवेक खड़ा है और ये वचन निकला है, फिर इसमें क्या रहस्य है? सीधा समझ में नहीं आता है तो बात इसमें क्या रही है, उसका संशोधन करना चाहिए, और इतनी धीरे विवेकवान को होनी चाहिए, ये विवेक का कर्तव्य बात तो थी। जब उसका लोकोत्तर विवेक प्रकट है उसमें, तब लौकिक विवेक भी नहीं होगा, ऐसा विचार करना बुद्धिमानी का तो विषय नहीं रहता है।
यार मैं बोलूं
कहते हैं कि अभिलाषी को, मोक्षाभिलाषी को उपदेश तो परिणमेगा नहीं, भले मोक्ष की अभिलाषा करे कि हमको तो मोक्ष चाहिए, उपदेश का उपदेश तो परिणमेगा नहीं, लेकिन मनन भी नहीं रहेगा, निधिध्यासन भी नहीं रहेगा। इसलिए मुमुक्षु को ज्ञानी की भक्ति अवश्य कर्तव्य है, ऐसा सत्पुरुषों ने कहा है। मैं कहता हूँ नहीं, सब सत्पुरुषों ने ये बात कही है, भूतकाल में भी कही है, भविष्य में भी कहेंगे, बार में भी ये बात है कि शास्त्र में कही बात आज्ञाएं परोक्ष है, जीव को अधिकारी मैंने पात्र होने के लिए कही है, लेकिन मोक्ष होने के लिए ज्ञानी की प्रत्यक्ष आज्ञा का आराधन होना चाहिए। क्या शुरू से ये बात तो इस साल का है, 24 सम्यक दर्शन हुआ है इस साल में, श्रीमद राजचंद्र जी को इस उम्र में सम्यक दर्शन हुआ है, सम्यक दर्शन की मौजूदगी में ये बात चलती है। तो क्या कहा कि अशुभ ताल के शुभ करना, इस अभिप्राय को बदल करके पहले वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान करना, कि मैं कौन हूं, मैं ये देह वाला जो पुतला नजर में आता है वैसा ही हूं, या कोई भीतर में चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, क्या चीज है। विश्व में जड़ पदार्थ तो बहुत आसानी से नजर आता है, लेकिन एक चैतन्य पदार्थ है वो सीधा नजर नहीं आता है, लेकिन चैतन्य की बात बहुत जगह जगह पे है, जैन मत में तो है, अन्य मत में भी जगह जगह पर है। तो ये चैतन्य का जो अस्तित्व है वो क्या है, कैसा है, मैं जीव हूं और मुझे जीना है, मरना नहीं है, जिंदा रहना है, ये बात तो अव्यक्त रूप से भी अभिप्राय में है, इसलिए मैं जीव हूं ये बात तो आ गई। अब जीव हूं तो कैसा हूं, ये पुतला हूं, देह स्वरूप जो दिखने में आता है, आईने में दिखता है स्वयं का सारे फोटो, ऐसा कोई मैं हूं या कोई अकेला चैतन्य स्वरूप ही हूं, और मेरा जो सुख दुख का जो प्रॉब्लम है, समस्या है, इसमें जड़ पदार्थ से मेरा सुख, ऐसा मेरा भी अभिप्राय है और सारा जगत का भी, फिर भी मेरा और जगत का किसी भी जीव को इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अब ये है क्या, बहुत बड़ी समस्या है। जब इसके पीछे जाता है कोई जीव, इसके संशोधन में कोई जाता है, तो उसके पहले, उसको सबसे पहले जड़ चैतन्य का जो विज्ञान है, जो साइंस है, कि जीव नाम का पदार्थ जिसको कहें, उसका गुणधर्म क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टर्स जिसको बोलते हैं, उसका गुणधर्म क्या है, और जड़ रजकण परमाणु है, इसका गुणधर्म का क्या है, और दोनों का संयोग है तो आपस में उसका एक्शन रिएक्शन क्या है, और उसमें सुख दुख की समस्या उसमें से हल होती है कि नहीं होती है। बस इस बात को, इस प्रश्न को उसको बराबर सामने रख के वस्तु स्वरूप का पहले सच्चा ज्ञान करना चाहिए। शुभ अशुभ टाल के शुभ करना, शुभ बढ़ाना, अशुभ नहीं करना, इस माथा फोड़ी में, सिर फोड़ी में नहीं जा करके, पहली बात यह है कि उसको वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना चाहिए, और उस ज्ञान करके उसमें आत्मा जो मूल स्वरूप में जो है, असल स्वरूप में है, उसका भान करना चाहिए, मैं हूं ऐसा, ऐसा उनको भान रहना चाहिए, भान होना चाहिए, फिर आगे की जो सब समस्या है उसका सब समाधान मिल जाएगा, कोई समस्या रहेगी
नहीं। देवादिदेव के सिमंदर भगवान नो जय हो, परम कृपालु श्री कान गुरुदेव नो, जय हो सनातन दिगंबर जय धर्म नो, जय हो।